और फेक वगैरह। तो इस तरह से उनके साथ शादी हुई। इसके एक साल के बाद फिर हजरत हफ्सा से हुई, और पता है हजरत हफ्सा भी हजरत उमर की बेटी थी, और ये दोनों ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीबी अस्हाब थे। इनकी बेटियों से निकाह किया, फिर उसके बाद हजरत जैनब बिनते खुजैमा से निकाह किया। ये तो चंद महीनों बाद ही फौत हो गई थी। फिर 4 हिजरी में हजरत उम्मे सलमा से निकाह किया। अब ये निकाह भी वो है कि बास औरतें वो हैं जो आपके असहाब हैं, जो जंगों में शहीद हो गए थे, उनकी बीवियां थी। अब क्योंकि लोग ये कह सकते थे कि देखें जी आदमियों को भेज देते हैं, वो वहां पे मतलब जंगों में शहीद हो रहे हैं, उनके घरों को कोई देखने वाला नहीं है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी केयर टेकिंग खुद अपनी जिम्मेदारी पे ले लेते थे कि आप उनके बाल बच्चे उनकी बीवियों को खुद संभालते थे कि उनसे उनके साथ निकाह कर लिया जो आपने। और हजरत उम्मे सलमा का तो मैं आपको बता रही ना, बहुत अकलमंद थी, बहुत समझदार थी, इल्म में बहुत आगे थी। फिर हजरत जैनब बिनते जहश के साथ जो निकाह हुआ है वो तो अभी आपने सुना ही है कि किस तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जैद से उनका निकाह कराया था कि मतलब वो मान भी नहीं रही थी, तो किस तरह उनका उनके साथ कराया। और उसके बाद तो यही चाह रहा था कि आपका ही इनके साथ निकाह हो तो फिर बात बनेगी, क्योंकि देखिए ना एक अपनी जिम्मेदारी पे निकाह कराया हुआ है और उसके बाद बात नहीं बनी, अगर जैद ने तलाक दे दी तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बनता था कि आप ही उनके साथ निकाह करें। दूसरा सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह ताला का हुक्म आ गया कि आपने ही निकाह करना। और फिर उसके बाद जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो यहूदी सरदार थे उनकी बेटियों से जो निकाह किए थे, उनके पीछे इतनी बड़ी खैर थी, क्योंकि अरब में ये रिवाज था कि जब उनकी बेटी किसी के हाँ चली जाती थी शादियों के, आज भी ऐसी चीजें हैं, तो फिर उन खानदानों के साथ दुश्मनी खत्म हो जाती थी। जैसे उम्मे हबीबा जो हैं वो अबू सुफियान की बेटी थी, तो अबू सुफियान की दुश्मनी फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ वैसी नहीं रह सकी थी, इसी तरह यहूदियों की वैसी दुश्मनी नहीं रह सकी थी। तो ये बात दुश्मनों की बेटियों से शादी करनी, ये भी एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसमें हिकमत थी कि दुश्मनी कम हो जाए। अब आप देखें ये कहने को आप सोचते हैं कि इतनी शादियां की, हालांकि आज अगर आप 100 आदमी बिठा लेना तो उनमें 99 जरूर ऐसे होंगे जिनको बीवियों से बहुत शिकायत होगी और बहुत मसले होंगे और बहुत तंगी की बातें करेंगे वो कि अपनी बीवियों के बारे में। तो बीवी रखना कोई आसान काम नहीं होता, एक बीवी से ही आदमियों को इतनी शिकायत हो जाती है, तो अगर एक से जायद बीवियां हों, और फिर अगर आगे चल के हम देखेंगे फिर इनके बारे में भी क्या अहकाम अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए, उनको संभालना, उनके मसले मसाइल सुनना, उन घरों को चलाना, उनको टाइम देना, उनको अगर वो आपस के अंदर अगर लड़ पड़े तो तब उनके मसले हल कराना, तो वो आदमी तो फिर कुछ और कर ही नहीं सकता, फिर तो बस वो उन्हीं के मसले हल करता रहेगा। तो ये आसान नहीं होता, जबी तो आप देखते हैं कि लोग शादी एक कर लेते हैं उसके बाद बाहर वैसे फ्रेंडशिप्स रखेंगे लेकिन शादी नहीं और करना चाहते। ये कौन, अब तो ये वक्त आ गया है कि बाज जो नौजवान है वो शादी के लिए ही तैयार नहीं होते कि कौन अपने गले में ये मुश्किल डाले। नहीं, शादी लोग फ्रेंडशिप को प्रेफर करते हैं, शादी कोई जिम्मेदारी की बात होती है, एक निभा करने की बात होती है, बहुत चीजें इसके अंदर देखनी होती है। तो ये आसान चीज नहीं होती कि ये इसको हंसी मजाक कर लेना कि जो ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी शादियां क्यों की और इसको एक एतराज करना, ये तो एक हेडेक लेने की चीज होती है जो आज समझी जाती है। एक घर चलाना मुश्किल होता है, कहां इतने घर चलाना, और फिर उनके भी आगे बच्चे भी थे पिछले खानदानों से, उनको भी देखना, ये आसान है क्या? लेकिन हमारे लिए बस मुंह से बात कर देना। और सबसे ज्यादा शर्म की ये बात है कि अगर किसी मुसलमान को कोई गैर मुस्लिम ऐसा कहता है तो उसको इस चीज के बारे में इल्म होना चाहिए, उसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के बारे में कम से कम ये बेसिक चीजें तो मालूम होनी चाहिए, ना कि उठ के खुद भी इतराज शुरू कर दे। ये कौन सा तरीका है? अल्लाह ताला इस चीज से महफूज रखे हम सबको। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये इजाजत दी ताकि आपके ऊपर इसमें इस मामले में जरा भी कोई तंगी ना हो औरतों के साथ निकाह करने के मामले में, और आप उसको हराम ना समझने लगे, बल्कि अल्लाह ताला ने क्लियर करके यह अहकाम देकर इस तंगी से निकाल दिया। अल्लाह गफूर रहीम है, ऐसे अहकाम नाजिल करता है जिनसे अपने बंदों को तंगियों से निकालता है और मगफरत का दरवाजा खोल देता है। अब आपको पता चल गया ना खालिसतन लक का माना, कि ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह की तरफ से इजाजत थी तो फिर उसके बाद किसी और को भी इतराज की जरूरत नहीं है। तुर्जी मन तशाओ मिनहुन्ना व तुवी इलैका मन तशा, जिसको चाहे आप दूर करें इनमें से और आप जगह दें अपनी तरफ जिसको आप चाहें। व मन बतागैता मिम्मन अज़लता फला जुनाह अलैका, जिसको आप चाहें इनमें से अलग कर दें जिसको, और इसपे इसमें आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये इजाजत दी गई, चूंकि आपकी बहुत सारी बीवियां थीं तो आपको इजाजत थी, आपको चॉइस थी कि आप किसी एक के घर जाएं, दूसरे के ना जाएं, किसी एक को मतलब जिसकी बारी है उसको बारी ना दें, किसी और को बारी दे दें, जिसको चाहें निकाह में रखें, जिसको चाहें अपने से दूर कर दें। ये सब आपको इजाजत थी। आम देखें, जो आम मुसलमान है ना, उनको तो ये जरूरी है, लाजमी है कि वो एक से ज्यादा निकाह करें, तो बराबरी करें सबको खर्चा देने में, सबको टाइम देने में, उनकी बारियां बांधें, ये करें तकसीम, ये सारी इंसाफ के साथ बराबरी के साथ होनी चाहिए, इसकी पाबंदी उनके लिए जरूरी है, ठीक है। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर से अल्लाह ताला ने ये पाबंदी हटा दी, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब ये फिक्र ना हो, ये टेंशन ना हो कि ओ आज इसकी बारी, इसके पास मुझे जाना, उसके पास जाना, इसको नहीं टाइम दिया, वो शिकायत कर देगी, इसको ऐसा नहीं कर दिया, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे से प्रेशर उठा लिया गया, ठीक है। क्योंकि इतने लोगों की जब एक बंदे पे जिम्मेदारी हो और उसने सारों के हकूक पूरे करने हो, हर एक कोई राजी करना हो, तो फिर एक बंदे के लिए कितना मुश्किल हो जाएगा। वो बाहर की चीजें देखेगा कि घर के निपटाएगा, ये उसके दिमाग में तो यही हर वक्त सवार होगा कि आज इसका टाइम देना था, इससे इसका ज्यादा हो गया और उसका कम हो गया, तो अब क्या होगा। तो अल्लाह ताला ने इजाजत दी है, सिर्फ अजवाज ज्यादा यानी चार से ज्यादा करने की इजाजत ही नहीं थी, बल्कि ये जो एक पाबंदी है ना कि बारी इसकी बारी है तो बस इसके पास ही जाना है, अगर दूसरे के पास चले गए तो गुनाह में ना शामिल हो जाए, इस तरह की चीजों को हटा दिया, ठीक है। इसके बावजूद सुभान अल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हालांकि अल्लाह ताला की तरफ से कोई कंपल्शन नहीं है, कोई ये आपके ऊपर पाबंदी नहीं है कि आपने बस इतना, आप जिसको चाहें दूर करें इनमें से, जिसको चाहें अपनी तरफ जगह दे दें, जिसको आप चाहें इनमें से अलग कर दें, आपके ऊपर कोई गुनाह नहीं है। यानी जितने अलग कर दें का मतलब क्या, जितने दिन के लिए चाहें उसके पास ना जाए, उसको छोड़ दें, ठीक है, एक के साथ ही होके रहें, बाकियों को अलग कर दिया। आप सबको पता है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से सबसे मोहब्बत थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं किया था कि आप उन्हीं को बस टाइम दें, बाकियों के पास नहीं जा रहे, उन्हीं के साथ बस टाइम गुजार रहे हैं, उन सबसे दूसरों की बारियां भी उनको दे दी हैं। चाहे तो ऐसे कर भी सकते थे, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं फरमाया, ये आपका इंसाफ था। बल्कि बाद में जब हज़रत सौदा बूढ़ी हो गई थी तो फिर उन्होंने क्या किया था कि अपनी बारी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दी, क्योंकि पहले भी वो उम्र रसीदा ही थी, तो अपनी बारी हजरत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को दे दी थी, और ये उन्होंने अपनी मर्जी से की थी। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी के साथ भी ऐसा नहीं किया कि मसलन है, मिसाल के तौर पर ये भी कर सकते थे कि एक की बारी दो दिन की कर दें, बाकी की बारी एक एक दिन की हो, किसी की बारी तीन दिन के बाद आए, किसी की नौ दिन के बाद आए। बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये दुआ फरमाते थे, या अल्लाह जिस चीज में मेरा इख्तियार है इसमें तो मैंने बराबरी कर ली है, यानी ना नफका देने में, रात गुजारने में, मगर जिसमें मेरा इख्तियार नहीं है इस मामले में मुझे मलामत ना फरमाइए। यानी दिल में किसी के लिए होता है ना, बच्चों में भी, हमारी सारी औलाद होती है लेकिन कोई एक बच्चा दिल मतलब दिल के ज्यादा करीब हो जाता है, तो उसमें अपने दिल पे इंसान का नहीं इख्तियार होता। तो यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि दिल में अगर एक के लिए ज्यादा मोहब्बत है, ये नहीं था कि उसमें कोई फर्क किया बारियां रखने में या इसमें, बल्कि उसमें बराबरी फरमाई, मगर दिल पे इंसान का इख्तियार नहीं। तो इसके ऊपर दुआ मांगा करते थे कि अल्लाह इसके ऊपर ना मेरी पूछ करना। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात का वक्त करीब था तो अज़वाजे मुतहरात बाकियों के घरों में रोजाना देखें एक से दूसरे घर, दूसरे से तीसरे घर मुंतकिल होना तो कितना मुश्किल था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले सबसे इजाजत ली कि अगर इजाजत हो तो मैं आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर में बीमारी के दिन गुजारना चाहता हूँ। तो आपने इजाजत दी थी, हालांकि कोई ऐसी जरूरत नहीं थी क्योंकि अल्लाह ताला की तरफ से रुख्सत थी। सुभान अल्लाह, ये होता है इंसाफ। आज कोई कर भी लेता है, एक से दो ही कर ले, चाहे एक से दो से ज्यादा तो छोड़ें, एक से दो ही कर ले तो कितना इंसाफ कर पाता है। तो अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी, जिसको चाहे मौखर करें, जिसको चाहे करीब करें। ये भी हुक्म याद रखिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास है, आम उम्मती जो है वो इसको लेके ये नहीं कह सकते देखा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तो ये इजाजत थी तो हमें भी ये इजाजत है। ठीक है, ऐसा कोई नहीं कर सकता। अब क्या फरमाया, ज़ालिक अदना, ये ज्यादा करीब है, अंतकर आयुनहुन्ना, के ठंडी हूं उनकी निगाहें, जिनकी अज़वाजे मुतहरात की, यानी जब आपके ऊपर से ये बराबरी की फर्जियत उठा दी गई तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हर तरह का इख्तियार है कि अब आप जिसके पास जाएं, जिसके पास नहीं जाएंगे तो अब यानी उनको भी पता है कि हमारा तो ये हक नहीं है, फिर भी अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके पास आएंगे तो उनको अच्छा लगेगा, उनको खुशी होगी। यानी जब एक बंदे का होता है ना कि ये तो मेरा हक है, ये तो ये इसके ऊपर फर्ज है करना, तो फिर वो ना निभा सके या ना कर सके तो बहुत आपस के अंदर रंजिशें हो जाती हैं, आपस में नाराजगियां हो जाती हैं। और अगर ये पता हो तो ये इस पे तो हमारा कोई हक है ही नहीं, फिर तो वो जो भी मेहरबानी करे फिर खुशी होती है। तो यहाँ पे अजवाज के साथ बराबरी करना आपके ऊपर वाजिब नहीं था, आपके पास अथॉरिटी थी, जिसको जितना मर्जी हिस्सा दें, जिसको जितनी मर्जी तवज्जो दें, जिसके साथ मर्जी जाके रहें, जितना मर्जी रहें। तो अब जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंसाफ करते थे और उनके पास जाते थे, उनको टाइम देते थे, तो उनको बहुत खुशी होती थी, यानी उनकी आंखें ठंडी हों। वला यहज़न्ना, और ना हो गमगीन हो कि आप वो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको एक को तरजीह भी नहीं दी दूसरे के ऊपर, बारियां मुकर्रर की। और वो यरदैना बिमा आतैताहुन्ना कुल्लुहुन्ना, और वो राजी हो जाएं साथ उसके जो आपने उनको दिया सब की सबको, यानी जिसके हाँ रात गुजारने का होता था उसको ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी बारी देते थे इजाजत होने के बावजूद। तो ये भी उनके लिए फिर राजी होने की चीज थी कि वो ठीक है जितना हमें मिल गया उसी के ऊपर वो खुश हो गई। ठीक है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे तो कोई हकूक अदा करने की जिम्मेदारी भी नहीं है, फिर भी देखो इन्होंने हमें हमारे टाइम दिया, तो ये कितनी बड़ी बात है। तो फिर वो खुश होती थी इस पे। तो इससे हमें पता चलता है कि यहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाकायदा बारियां मुकर्रर की थी, और सिर्फ बारी वाले दिन ही नहीं एक के जाते थे, बल्कि असर के बाद आप अपनी बीवियों के हाँ थोड़ी थोड़ी देर के लिए चक्कर लगाते थे, फिर जिसकी बारी होती थी उसके हाँ रात गुजारते थे। और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बारियों की तकसीम में हम में से किसी को किसी पर तरजीह नहीं देते थे, अगरचे कम ही ऐसा होता था कि आप किसी रोज अपनी सब बीवियों के हाँ ना जाते, मगर जिसकी बारी का दिन होता था उसके यहाँ रात गुजारते थे। समझा भी आप? अब देख लें कि अजवाज का जहन शुरू से इस तरह से सेट कर दिया गया था कि वो आपसे बहुत ज्यादा डिमांड ना करें, बल्कि जो आप दे दें उसके ऊपर बस मुतमईन हो जाएं, उसी पर खुश हो जाएं। अदरवाइज एक आदमी ने बाहर इतना बड़ा मिशन पूरा करना, उसके घर में ही अगर सुकून नहीं होगा, वो घर में आएगा तो घर में एक परेशानी है, एक नाराज बैठी हुई कि कल क्यों नहीं आए थे, मेरी बारी का दिन उसको क्यों दे दिया था, मेरे साथ क्यों नहीं वक्त स्पेंड किया, ऐसे क्यों कह दिया, उसने मुझे ये कह दिया और उसने, तो वो आदमी घर के मसले सुलझाएगा या बाहर के? तो अब दो चीजें यहाँ पे पता चल गई। नंबर वन, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वक्त फिक्स करने से आजाद कर दिया गया कि आपको कोई मसला नहीं है कि आप जरूरी है कि हर एक की बारी फिक्स करें, इसलिए वो डिमांड भी नहीं कर सकती थी। नंबर टू, क्या बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी गई कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए रख दी गई कि जो टाइम भी उनके लिए आप रखें उस पर वो राजी हो जाए कि चलो आ तो गए ना, कम अज कम मुझे इतना ही टाइम मिल गया। वल्लाहु यालमु मा फी कुलूबिकुम, अल्लाह जानता है जो तुम्हारे दिलों में है। तुम्हारे दिलों में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में भी जो है वो भी अल्लाह ताला को पता है कि आपका दिल इंक्लाइन एक तरफ को है, मायल एक तरफ को, एक दिल में मोहब्बत एक की ज्यादा है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर भी इंसाफ करते हैं। और जो उम्महातुल मोमिनीन के दिलों के अंदर है वो भी अल्लाह ताला जानता है, अल्लाह को सब मालूम है, उसके नोटिस में। वकान अल्लाहु अलीमन हलीमा, और अल्लाह ताला इल्म वाला भी है, हिल्म वाला भी। कोई वसवसा किसी के दिल के अंदर आता है वो उसको भी जानता है, कोई उकसाहट शैतान की तरफ से आती है उसको भी जानता है, मगर वो हलीम है, वो पकड़ता नहीं है फौरन। इल्म होने के बावजूद हिल्म होना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी सिफत है। इसलिए कि जब यूजली इंसान जब होते हैं, जब उनको कोई चीज का इल्म हो जाए, मसलन ये पता चल जाए कि फलां एक गलत काम कर रहा है, ये मेरा बच्चा कोई गलत चीज कर रहा है, तो बहुत मुश्किल होता है इंसान को अपने आप को कंट्रोल करना और उसके ऊपर सबर करना। अल्लाह ताला ऐसा है कि उसके इल्म में इंसानों की हर बात है, हर मामला है, इसके बावजूद वो फौरी पकड़ नहीं करता, फौरी सजा नहीं देता, हत्ता के फरिश्तों को भी इंतजार करने को फरमाया कि जो ही कोई आदमी बुराई करे उसी वक्त ना लिख दो, कुछ वक्त दो, हो सकता है तौबा कर ले। और नेकी लिखने लगो तो स्टार्ट ही 10 से करो, 1 से स्टार्ट ना करो कि 1 लिखो, नो 10 लिखो। ये है उसका हिल्म कि वो चांस देता है, वो टाइम देता है, वो फौरन बदला नहीं लेता। لا يحل لك النساء من بعد, نہیں حلال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عورتیں اس کے بعد۔ اس کے بعد ایک حکم یہ بھی آیا کہ اب یہ ان عورتوں نے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ترجیح دی ہے, میں نے آپ کو آیت تخیر بتائی تھی کہ انہوں نے, ان کو اختیار دیا گیا کہ آپ نے دنیا لینی ہے اور اس کے سامان لینے ہیں, یا آپ کو اللہ اور اس کا رسول چاہیے اور آخرت کا گھر چاہیے, تو انہوں نے اللہ رسول اور آخرت کے گھر کو چوز کیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام کیا دیا اس بات کے اوپر کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اب آپ کے لیے حلال نہیں ہے عورتوں میں سے اس کے بعد کوئی بھی عورت, کیونکہ ان کی اپریسیشن میں جو یہ آپ کے لیے اتنی بڑی قربانی دے رہی ہیں کہ انہوں نے آپ کو چن لیا ساری دنیا کی چیزوں کے اوپر, سارے مال متا کے اوپر۔ اور دیکھیں اور لوگ بھی وہاں پہ اچھے بھلے بھی رہتے تھے, بہت مالدار بھی رہتے تھے, لیکن انہوں نے ترجیح دی اس فقر و فاقے کو, لیکن اس کے ساتھ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ان کو مل جائے, آپ کا ساتھ ان کو مل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر انہوں نے جو قربانی دی ہے, اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے پابند فرما دیا کہ اب آپ ان کے بعد کسی اور عورت سے نکاح نہیں کر سکتے۔ وَلَا أَن تَبَدَّلَ بِهِنَّ مِنْ أَزْوَاجٍ, اور نہ آپ بدل سکتے ان کے بدلے اور بیویوں سے, یعنی اب ان کے بدلے اور بیوی نہیں لا سکتے کہ اب ان کو طلاق دے کے چلو نو ہی کرنی ہے تو ان کو طلاق دے کے ان کی جگہ کوئی اور لے جائے, یعنی نمبر ڈزنٹ میٹر, بس یہی ہوں گی اب آپ کی بیویاں۔ وَلَوْ عَجَبَكَ حُسْنُهُنَّ, چاہے آپ کو پسند آئے کسی اور کا حسن, یعنی آپ کو کتنی بھی کوئی اور عورت پسند آ جائے, کوئی اور عورت کتنی بھی خوبصورت ہو, پھر بھی آپ اسے نکاح نہیں کر سکتے۔ اس میں بھی اللہ تعالی کی طرف سے ان عورتوں کے لیے ایک, یعنی ایک آنر تھا امہات المومنین کے لیے۔ اور الا ما ملکت یمینک, سوائے لونڈیوں کے, لونڈیاں تو جتنی بھی رکھ لے اس وقت میں, اور آپ کو پتہ ہے پہلے زمانوں کے اندر بھی لونڈیوں کی اجازت تھی کہ آپ کتنی بھی رکھ سکتے ہیں لونڈیوں, مگر یہ جو یعنی حکم تھا या कुछ अरसे के लिए था, उसके बाद अल्लाह ताला ने इजाजत दे दी थी, क्योंकि एक और रिवायत में आता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसकी इजाजत मिल गई थी कि आप किसी से भी चाहें तो निकाह फिर कर सकते हैं, और ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल से पहले ही अल्लाह ने आपके लिए और औरतों को भी हलाल कर दिया था। लेकिन इसके बावजूद फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई और निकाह नहीं फरमाया था। وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا, और है अल्लाह ताला हर चीज पर निगरान, हर चीज पर निगरान है अल्लाह ताला, यानी हर चीज के ऊपर उसकी नजर है, वो हर चीज को देख रहा है। तिलावत सुने।
या अय्युहा लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुमिनाति ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا. يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج وكان الله غفورا رحيما ترجي من تشاء منهن وتؤوي إليك من تشاء ومن ابتغيت ممن عزلت فلا جناح عليك ذلك أدنى أن تقر أعينهن ولا يحزن ويرضين بما آتيتهن كلهن والله يعلم ما في قلوبكم وكان الله عليما حليما لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك وكان الله على كل شيء رقيباً.